नमस्कार भारत, 30 नवंबर दिन शुक्रवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। रूस यूक्रेन विवाद के बाद ट्रंप ने G20 सम्मेलन में पुतिन के साथ मुलाकात की रद्द। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमा हुए किसान आज संसद की ओर करेंगे कूच।
वो ये है कि 8 बजे हम कूच करेंगे और 10 बजे से संसद मार्ग में सभा होगी। उस सभा में 15 से 20 हजार लोग होंगे, ऐसा पुलिस ने बताया हमें, बट हमें लगता है कि इससे ज्यादा होने वाला है।
छपरा रेलवे स्टेशन से मिले नर कंकालों की तस्करी का क्या है अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन?
जलपाईगुड़ी में बसेरा है, वहीं से ये लोग काम करते रहे, पर नेपाल और भूटान इन दो राष्ट्रों से ये कार्य करने का अभी तक में आया है कि उस जगह पर ले जाके ये लोग बेचते हैं।
ये भी जानेंगे मराठा आरक्षण की राह भी कितनी आसान है, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। यूक्रेन और रूस के बीच हुए विवाद के बाद अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रस्तावित बैठक को रद्द कर दिया है। ट्रंप ने एक ट्वीट कर कहा कि अर्जेंटीना में होने जा रहे G20 सम्मेलन में वो पुतिन से नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि वो ये बैठक इसलिए रद्द कर रहे हैं क्योंकि रूस ने यूक्रेन के जहाजों और उसके नाविकों को अब तक वापस नहीं भेजा है। रूस ने राष्ट्रपति के बैठक रद्द करने के फैसले पर खेद जताया है। क्राइमिया के प्रवक्ता ने कहा कि पुतिन अब भी ट्रंप से मुलाकात के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व वकील माइकल कोहेन को एक संसदीय समिति को गुमराह करने का दोषी पाया गया है। ये समिति 2016 में हुए अमरीकी चुनावों में रूसी हस्तक्षेप की जांच कर रही है। कोहेन ने माना कि उन्होंने रूस की राजधानी मॉस्को में ट्रंप संगठन के एक प्रोजेक्ट के बारे में झूठ बोला था। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने कोहेन को एक कमजोर आदमी बताया है। उन्होंने कहा कि कोहेन अपनी सजा कम कराने के लिए ये झूठ बोल रहे हैं। खबर है कि इसराइल के लड़ाकू विमानों ने सीरिया में कई जगह बम बरसाए हैं। माना जा रहा है कि 2 महीने से ज्यादा वक्त में ये सीरिया का अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला है। सीरिया के सरकारी मीडिया का कहना है कि वायुसेना ने दमिश्क के दक्षिण में स्थित दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया है। दूसरी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोलान के पास का एक इलाका इस हमले की चपेट में आया है। इसके निशाने पर ईरानी मिलिशिया और हिजबुल्ला के हथियार भंडार थे। हालांकि इजरायली सेना ने अब तक इन हमलों की पुष्टि नहीं की है। सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार जैन एगलेन ने बीबीसी से कहा कि 7 साल से चल रहे संघर्ष में सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों का हुआ है। एगलेन का कहना है कि सीरिया फिलहाल शांति से कोसों दूर है।
The population paid a tremendous price for this war on terror.
आम लोगों ने इस युद्ध की भारी कीमत चुकाई है। सीरिया में शांति आने में अभी बहुत वक्त लगेगा। बड़ा कारण यह है कि पक्षों के बीच सुलह होती नहीं दिख रही। संघर्ष का अंत नजदीक है, लेकिन शांति अभी कोसों दूर है। ये थे संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार जैन एगलेन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जिम्बाब्वे में गहराते आर्थिक संकट के विरोध में विपक्ष के हजारों समर्थकों ने राजधानी हरारे में मार्च किया। मुख्य विपक्षी पार्टी एमडीसी के नेता नेल्सन चमीसा ने एक रैली में कहा कि लोग रॉबर्ट मुगाबे के प्रशासन काल से भी बुरे हालातों में गुजर रहे हैं। देश में ईंधन खत्म हो गया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने राष्ट्रपति इमरसन मननगागवा की सरकार को बदलने की मांग की। एमडीसी ने जुलाई में हुए चुनाव नतीजों को मानने से इनकार कर दिया था, जिसमें चमीसा मननगागवा से हार गए थे। चमीसा ने कहा कि ये मुद्दा अभी भी सुलझा नहीं है। हम इस राष्ट्रपति को नहीं मानते। मननगागवा वो राष्ट्रपति नहीं है जिसके लिए जनता ने वोट किया था। संवैधानिक अदालत ने मननगागवा को हरी झंडी दे दी थी, लेकिन हम अब भी उन नतीजों को वैध नहीं मानते। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रही जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के विमान की आपात लैंडिंग करानी पड़ी। बताया जा रहा है कि विमान में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से विमान को उड़ान भरने के 1 घंटे बाद ही पश्चिमी जर्मनी के एक शहर में सुरक्षित उतार लिया गया। विमान में एंगेला के साथ उनका प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद था। विमान में खराबी की वजह से एंगेला समय पर अर्जेंटीना नहीं पहुँच पाएंगी, जिसकी वजह से वो G20 के उद्घाटन समारोह का हिस्सा नहीं बनेंगी। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इसका सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में दुनिया के दिग्गज राजनेताओं का जमघट लगना शुरू हो चुका है। आज से शुरू होने वाले G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अर्जेंटीना पहुंच चुके हैं, लेकिन पत्रकार जमाल खाशोजी यूक्रेन रूस विवाद जैसे कई मुद्दों को लेकर G20 का माहौल बेहद गंभीर हो सकता है और माना जा रहा है कि इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। यूक्रेन रूस विवाद के कारण अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रूसी समकक्ष पुतिन के साथ बैठक रद्द कर दी है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए मानसी दास से।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो G20 समिट के इतर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक नहीं करेंगे। उन्होंने एक ट्वीट करके इस बैठक को रद्द करने की जानकारी दी। ट्रंप ने कहा कि ये बैठक वो इसलिए रद्द कर रहे हैं क्योंकि रूस ने यूक्रेन के जहाजों और उनके नाविकों को अब तक रिहा नहीं किया है। रूस ने राष्ट्रपति ट्रंप के बैठक रद्द करने के फैसले पर खेद जताया है। क्राइमिया के प्रवक्ता ने कहा है कि पुतिन अब भी ट्रंप से मुलाकात के लिए तैयार हैं। दरअसल रविवार को क्राइमिया प्रायद्वीप में रूसी सैनिकों ने यूक्रेन नौसेना के जहाजों पर फायरिंग कर दी थी और उन्हें कब्जे में ले लिया था। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति पेत्रो पोरोशेंको ने यूक्रेन में रह रहे रूस के नागरिकों पर बैंक से पैसे निकालने, विदेशी मुद्रा बदलने और विदेश यात्रा करने पर पाबंदियां लगा दी है। साथ ही उन्होंने यूक्रेन के सीमाई क्षेत्रों में 30 दिनों का मार्शल लॉ लागू कर दिया है। इस बारे में उन्होंने कहा, मार्शल लॉ दुनिया को ये दिखाने के लिए लागू किया गया है कि अगर उसने हमला करने का सोचा तो भी उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी, और अगर रूस आगे किसी तरह का आक्रामक रुख नहीं दिखाता तो मार्शल लॉ लागू करने का मकसद पूरा हो जाएगा। ये थे यूक्रेन के राष्ट्रपति पेत्रो पोरोशेंको के शब्द। दूसरे यूरोपीय देश इस विवाद पर नजर बनाए हुए हैं। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने इस घटना के लिए पूरी तरह रूस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे को शुक्रवार से अर्जेंटीना में शुरू हो रहे G20 सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन के आगे उठाएंगी। वहीं एस्टोनिया के रक्षा मंत्री जूरी लुइक ने बीबीसी से कहा, इसका कोई सैन्य समाधान नहीं है। मेरा मतलब है इसका राजनयिक समाधान निकालना होगा। यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि राजनीतिक दबाव जरूरी नहीं है। वैश्विक समुदाय की ओर से पहले ही रूस पर कई प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं और मेरा मानना है कि ये प्रतिबंध सफल भी हुए हैं। इससे रूस पर दबाव बना है। ये थे एस्टोनिया के रक्षा मंत्री जूरी लुइक के शब्द। वहीं रूस का इस मामले को लेकर कहना है कि यूक्रेनिया के प्रशासन ने उसे समुद्री संघर्ष को लेकर उकसाया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसकी वजह बताते हुए कहते हैं कि यूक्रेनिया में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। रूस और यूक्रेन के बीच हुआ ये संघर्ष क्राइमिया और रूस के बीच पड़ने वाले कर्च स्ट्रेट यानी एक तंग जलमार्ग पर हुआ है। रविवार की सुबह यूक्रेन की नौसेना के 2 बंदूकों से लैस जहाज और 1 नौकाओं को खींचने वाला जहाज इस रास्ते से होकर आजोव सागर में स्थित बंदरगाह शहर मेरीपोल में पहुंचने की कोशिश कर रहा था। कर्च स्ट्रेट रूस और क्राइमिया को अलग करता है। क्राइमिया यूक्रेनियाई प्रायद्वीप का हिस्सा है जिस पर साल 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था।
G20 में नहीं होगी ट्रंप पुतिन की मुलाकात। रिपोर्ट सुना रही थी मानसी दास। देश भर के हजारों किसान एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली में जमा हो चुके हैं। ये किसान देश के अलग अलग राज्यों से आकर दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे हैं और आज संसद की ओर मार्च करेंगे। कर्ज माफी, संसद का विशेष सत्र बुलाने और उपज की लागत को लेकर 2 प्राइवेट मेंबर्स बिल पारित करवाने जैसी उनकी मांगे हैं। इस आंदोलन में कई किसान संगठन हैं जिसमें से एक ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति है। इसके सचिव अवीक साहा के साथ बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली ने बात की और पूछा कि आज क्या क्या होने वाला है।
वो ये है कि 8 बजे हम पूछ करेंगे और 10 बजे से संसद मार्ग में सभा होगी। उस सभा में 15 से 20 हजार लोग होंगे, ऐसा पुलिस ने बताया हमें। हमें लगता है कि इससे ज्यादा होने वाला है।
अभी क्या लगता है कि आपको दूसरी जगह से बहुत सारे किसानों का जत्था और समूह अभी पहुंचेगा तो 15,000 से ये संख्या बढ़ सकती है?
जैसे मैंने कहा कि 20,000 22,000-25,000 ऐसा एक्सपेक्टेशन है। बट अभी जो है जितना रेजिस्टेंस बढ़ रहा है पुलिस का और नाजायज कंडीशन डालने की वो कोशिश कर रहे हैं, उतना संख्या बढ़ने की संभावना है। नजदीक के राज्यों से, हरियाणा से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान से फिर और अधिक संख्या में किसान आएंगे।
किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस पुलिस डालने की कोशिश कर रही है जो आप कह रहे हैं कि बेजा रिस्ट्रिक्शंस है?
देखिए, हमारा एप्लीकेशन फॉर परमिशन था अक्टूबर में, मिड अक्टूबर में। पुलिस 22 नवंबर को एक रेगुलेशन बनाती है, उनकी अपनी रेगुलेशन है, और जिसमें वो बताती है कि दिल्ली में कहीं पर प्रोसेशन करना ही अलाउड नहीं होगा और जंतर मंतर में 1,000 से अधिक लोग कोई भी सभा नहीं कर पाएंगे। तो ये तो एक तरह से ये कहना है कि आप प्रोटेस्ट मत करो, ना बोलने का एक दूसरा तरीका है। तो ये तो ना किसान संगठनों को मंजूर है और ना ही देश में और बाकी जो चीज लेके जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनको ये होगा। बट मुद्दे की बात ये है कि 22 तारीख की रेगुलेशन, 22 नवंबर की रेगुलेशन को वो रेट्रोस्पेक्टिवली 15 अक्टूबर की एप्लीकेशन के ऊपर लगा रहे हैं। ये गैर कानूनी है। हमारी मार्च को, हमारे गैदरिंग को छोटा दिखाने का एक प्रयास है। किसके इंस्ट्रक्शन से ये प्रयास है ये तो आप गेस कर सकते हैं कि भाई कम किसान आए हैं, 1,000 किसान ही प्रदर्शन किए हैं।
कल हमें जैसा कि सुनने में आया था कि विपक्ष के कई नेताओं को आपने दावत दी है इस सभा को संबोधित करने के लिए, मैं ये जानना चाहूंगा कि कौन कौन से नेतागण कल आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं इसमें?
देखिए, 21 पार्टियों ने हमारे AIKCC के दो बिल्स को समर्थन लिख के किया था। उन्होंने समिति बनाई थी जिन्होंने बिल को स्टडी किया था और उसके बाद समर्थन लिख के दिया था, रेजोल्यूशन साइन किए। उन 21 पार्टियों के नेतागण को ही आएंगे ये हमारा समझ है। इसके अलावा JDU नीतीश कुमार जी की पार्टी जो कि NDA के गठबंधन में है, उनके भी नेता आएंगे, शिवसेना आएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ ऑपोजिशन की अलायंसेस की समर्थन हमें नहीं मिला है, हमें रूलिंग पार्टी के पार्टनर्स का भी समर्थन मिला है।
ये थे ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति के सचिव अवीक साह। वहीं केंद्र सरकार ने UPA सरकार के 10 साल के कार्यकाल के अधिकांश वर्षों के दौरान हुई GDP में बढ़ोतरी के आंकड़ों को घटा दिया है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2010 से 2011 में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8.5% रही थी, जबकि पुरानी सरकार ने 10.3% बढ़ोतरी का अनुमान लगाया था। कांग्रेस ने GDP के आंकड़ों में हुए फेरबदल को मौजूदा सरकार का घटिया मजाक बताया है। इन बदलावों की हकीकत क्या है, यही जानने के लिए BBC संवाददाता नवीन नेगी ने संपर्क किया वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पूजा मेहरा से।
जो नया तरीके से GDP मेथोडोलॉजी बनाई गई 2015 में, वो उस हिसाब से GDP को मेजर करने के लिए कोई भी डेटाबेसेस नहीं थे। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि ये डिसाइड किया गया जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो कंपनीज हैं, उनको पहले एक RBI का सर्वे होता था, उसके हिसाब से एस्टिमेट किया जाता था। अब ये डिसाइड किया कि उसके बजाय जो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर एक डेटाबेस है जिसमें सारी कंपनीज अपना एनुअल रिपोर्ट फाइल करते हैं, अपना एनुअल रिजल्ट्स फाइल करती हैं, उसमें से डेटा निकाला जाएगा, उसके हिसाब से एस्टिमेशन होगा। तो ये 2011-12 से तो हो गया, लेकिन ये जो डेटाबेस था कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री का, ये 2006 के बाद में ही है। 2006 के पहले ये डेटाबेस है ही नहीं, क्योंकि कंपनियां उसके पहले फाइल करने का रूल ही नहीं था। तो अब उसके पहले के डेटा को कहाँ से लाया जाए, कैसे एस्टिमेट किया जाए? इसी तरह के हर सेक्टर के अंदर अलग अलग आइटम्स को मेजर करने के लिए बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि डेटाबेस नहीं थे। इस वजह से 3 साल तक ये हुआ नहीं। अब कल जो डेटा आया है, तो इन्होंने अलग अलग तरह के assumptions करके, अलग अलग तरह के एक डेटा को दूसरे डेटा का प्रॉक्सी यूज करके कुछ कर करा के एक बैक सीरीज दिया है जो 2004 तक का है। इसके ऊपर कांग्रेस इसलिए कह रही है कि ये सही नहीं है, क्योंकि जो भी किया गया है उसका एक तो पूरा बैकग्राउंड नोट्स दिए नहीं गए हैं, तो ये समझना मुश्किल है कि इन्होंने ये जो डेटा इधर उधर से लिया है, जिसको इन्होंने स्प्लाइस कहते हैं, किया है, उसका पूरा अभी तक एक्सप्लेनेशन मिलना बाकी है। जब वो एक्सप्लेनेशन मिलेगा तब थोड़ा साफ होगा। दूसरी बात, जो एक और कमिटी गवर्नमेंट की थी, उन्होंने कैलकुलेट किया था, उससे डेटा काफी नीचे आ गया है। कल जो डेटा आया उससे ये पता चलता है कि आज तक कभी भी इंडिया में 8.5% से ऊपर ग्रोथ हुई नहीं, 9% तक ग्रोथ गई नहीं, जबकि ये जो दूसरी कमेटी ने कैलकुलेट किया था वो 10% से ऊपर यूपीए के सालों में बता रहा था, उन्होंने एस्टिमेट किया था। तो इसलिए इनको शंका हो रही है कि ये जानबूझ के कम किया गया है।
जिस तरह से आपने बताया कि 2006 से पहले के सालों में जो तमाम कॉमोडिटीज हैं उनमें उन्होंने एक एस्टिमेट अपने आप से कुछ एज्यूम किया है और उस हिसाब से आंकड़ों को लिया है, क्या इस तरीके से कुछ एस्टिमेट करके एज्यूम करके आंकड़ों को जुटा पाना कितना संभव होता है?
ओवरऑल आज के डेट में जो हमारी इकोनॉमी की कॉम्प्लेक्सिटी है उसके हिसाब से जो हमारे डेटा कलेक्शन के चैलेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इस बैक सीरीज में जो इन्होंने किया है इसमें थोड़ी बहुत शंका उठती है, क्योंकि अगर ये इतना आसान होता करना तो ये 3 साल देर से नहीं आता। जो इसके पहले चीफ स्टैटिस्टिशियन थे TCA अनंत, वो यूपीए के समय में भी चीफ स्टैटिस्टिशियन थे और पिछले 3 साल इस सरकार में भी चीफ स्टैटिस्टिशियन थे, और वो 3 साल तक उन्होंने ये जो एक्सरसाइज इन्होंने नए जो स्टैटिस्टिशियन आए इन्होंने जो 3 महीने में कर दिए वो TCA अनंत ने 3 साल में नहीं की थी, क्योंकि वो एक बहुत ही माने हुए स्टैटिस्टिशियन है। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो ये काम शायद इससे वो इतना सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए उनके टेन्योर में ये नहीं आया।
GDP आंकड़ों में बदलाव, अधिक जानकारी दे रही थी आर्थिक पत्रकार पूजा मेहरा। महाराष्ट्र में कल राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठा आरक्षण विधेयक पेश किया और उसे बगैर किसी बहस के सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। अब इसे राज्यपाल के दस्तखत के लिए भेज दिया गया है। हालांकि सवाल अब भी उठता है कि क्या मराठा आरक्षण की राह आगे आसान होगी। सुनिए महाराष्ट्र से संजय रमाकांत तिवारी की रिपोर्ट।
अध्यक्ष महोदय, या सभागृहातल्या सर्व सदस्यांचे नेत्यांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो की आपण सगळ्यांनी या अत्यंत महत्त्वाच्या विधेयकाला एकमताने या ठिकाणी पाठिंबा दिला।
ये है राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में सभी दलों को धन्यवाद देते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। मराठा आरक्षण विधेयक के अनुसार मराठा समाज को नौकरियां और शिक्षा में 16% आरक्षण की गारंटी दी गई है। पिछले 2 वर्षों में इसके लिए करीब 58 साइलेंट मार्चेस मराठा संगठनों ने निकाले और बाद में आंदोलन हिंसक भी हो गया था। पिछली कांग्रेस सरकार ने मराठाओं को जो आरक्षण घोषित किया था वो कानूनी तौर पर अदालत में टिक नहीं पाया था, इसलिए फडणवीस सरकार ने राज्य पिछड़ा आयोग का गठन किया और उनसे रिपोर्ट मंगवाकर तकनीकी बारीकियों का पालन किया है। आंदोलन से जुड़े मराठा समाज के नेता इसके लिए फडणवीस सरकार का आभार तो जता रहे हैं, लेकिन आगे अदालत में कानूनी तौर पर राह कितनी आसान होगी इस पर असमंजस में हैं। इस मुद्दे पर हमने बात की औरंगाबाद में रविंद्र काले पाटिल से, जो मराठा मोर्चा आंदोलन से शुरुआत से जुड़े रहे हैं।
मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जो सभागृह में आज विधिमंडल में जो लाया है सरकार ने और ये जो पारित किया है आप जैसे बोल रहे हैं, तो SC BC ये जो है ये सहूलियत है और उससे 16% उन्होंने दिया, तो हम इसका खाली स्वागत करते हैं। लेकिन अभी पूरी तरह से सहमत नहीं है हम लोगों ने। असेंबली में अगर पारित होता है तो उसके आगे भी बहुत सारे स्टेप है, उस स्टेप से हमें जाना है अभी। और सबसे बड़ी बात बता दूं आपको कि न्यायालय में पूरी प्रक्रिया अभी हमारी बाकी है, हमारे सरकार की बाकी है। सरकार को अभी एफिडेविट करना है और कोर्ट में हाई कोर्ट में रखना है, ये भी याद रखिए।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं कि सामान्य तौर पर आरक्षण 50% से अधिक न हो। महाराष्ट्र में पहले ही कुल मिलाकर 52% आरक्षण है। पिछड़ा जाति आयोग की रिपोर्ट में महाराष्ट्र में मराठा समाज को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा पाया गया है, लिहाजा OBC की तर्ज पर अलग से SEBC इस नए कोटे के तहत मराठाओं को 16% आरक्षण देने की पेशकश की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के वकील और कानूनविद तुषार मंडलेकर ने BBC को बताया,
देखिए कानूनी राह आगे चलते इसमें बिल्कुल भी आसान नहीं है। जो महाराष्ट्र सरकार ने आज मराठा रिजर्वेशन एक पॉलिटिकल प्रेशर में किया हुआ है तो 16% ओवर एंड अबव परमिसेबल लिमिट से किया हुआ है। अब उनका कहना यह था कि हम OBC और बाकी पिछड़े वर्गों को हाथ न लगाते हुए इनको एडिशनल रिजर्वेशन देंगे। अगर इस रिजर्वेशन का एक बेस उनका ये है कि हमने एक मागास्वर्गीय आयोग लेके उनकी रिकमेंडेशन लेके किया हुआ है और इसमें ये वैलिड है, तो ऐसे कई राज्यों में अलग अलग मागास्वर्गीय आयोग का रिपोर्ट मांगी जाएंगी और जो बाकी डिमांड और चल रही है, मांग चल रही है अनेक अनेक राज्यों में, राजस्थान में चल रही है जातों की, गुजरात में चलते पार्टी करूंगी, सबको रिजर्वेशन देना पड़ेगा ओवर एंड अबव इमीडिएट सुप्रीम कोर्ट ने तय किए 50%, उसके ऊपर देना पड़ेगा।
अब आते हैं इसके राजनैतिक पक्ष पर। आरक्षण के मुद्दे पर समाज में दूरियां पैदा करने की कोशिश न हो, ऐसी अपील महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सदन में और बाहर भी कर चुके हैं, लेकिन 2019 में पहले केंद्र और फिर महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। मराठा आरक्षण के बाद अब धनगर, मुस्लिम और अन्य जातियों के आरक्षण की मांगों पर सियासी बयानबाजी भी अब तेज होने लगी है, लिहाजा इस मुद्दे पर राजनीतिक उठापटक और रस्साकशी अभी कुछ महीने और देखने मिल सकती है। महाराष्ट्र से संजय रमाकांत तिवारी, BBC।
महाराष्ट्र से रुख करते हैं बिहार का, जहां छपरा रेलवे स्टेशन से मंगलवार को 50 नरकंकाल मिलने के बाद पुलिस की जांच में चौंका देने वाले तथ्य सामने आए हैं। नरकंकालों के साथ एक शख्स को पुलिस ने रेलवे स्टेशन से ही गिरफ्तार कर लिया था, वहीं बुधवार को बलिया से एक और व्यक्ति को भी पकड़ लिया गया है। पुलिस का कहना है कि ये शख्स बलिया, बक्सर और छपरा के गंगा के तटीय इलाकों में फेंके हुए अधजले शवों को निकाल कर उन्हें 200 रुपए में बेच देते थे। मामले की जांच में पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी मिले हैं। सुनिए बिहार के छपरा से नीरज प्रियदर्शी की ये रिपोर्ट।
मानव चाहे जिस भी जाति धर्म का हो, सबके जीवन के अंत में एक संस्कार होता है जिससे आत्मा को मुक्ति मिलती है। शरीर को मिट्टी में मिल ही जाना है, चाहे वह किसी कब्र में दफन होकर मिट्टी बने या आग में जलकर खाक बन जाए, मगर इन लोगों ने यह भी नहीं होने दिया। यह मामला इसलिए ज्यादा संवेदनशील है। छपरा रेल GRP थाने में DSP तनवीर अहमद जिन लोगों की तरफ इशारा करके ये बात कह रहे थे, वो मोतिहारी के संजय प्रसाद और बलिया के अमर कुमार थे। संजय को छपरा रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को पूछताछ काउंटर के पास एक बैग में रखे 50 नरकंकालों के साथ गिरफ्तार किया गया है और उसकी निशानदेही पर छापेमारी कर बलिया के अमर कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से संजय इन नरकंकालों को खरीद कर ले जा रहा था। गिरफ्तार संजय से पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि इन नरकंकालों को सड़क मार्ग से नेपाल और भूटान ले जाने की योजना थी। मुजफ्फरपुर जोन के रेल SP संजय कुमार ने BBC को बताया कि
जलपाईगुड़ी में बसेरा है, वहीं से ये लोग काम करते रहे, पर नेपाल और भूटान इन दो राष्ट्रों से ये कार्य करने क्रम अभी तक में आया है कि उस जगह पर ले जाके ये लोग बेचते हैं और प्राप्त करने का जो स्थल है वो अभी तक से यही आया है कि बलिया और बक्सर इत्यादि वगैरह जगह पे जहाँ से गंगा बहती है उन जगहों से ही ये लोग जाके ये कार्य करते आ रहे हैं।
नरकंकालों के साथ गिरफ्तार संजय कुमार से पूछताछ और उसके मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स में मिले फॉरवर्ड लिंक और बैकवर्ड लिंकों के आधार पर पुलिस ने बुधवार को छापेमारी कर बलिया के अमर नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से संजय केवल 200 रुपए में नरमुंड और कंकाल खरीदकर नेपाल और भूटान में कई गुना अधिक कीमतों पर बेच दिया करता था। मामले की जांच कर रहे रेल पुलिस के DSP तनवीर अहमद BBC से कहते हैं,
इन चीजों की पुष्टि तब हुई जब इनके पास से डानी मुद्रा बरामद हुए, इनके पास से हमें नेपाली सिम बरामद हुए, इनके मोबाइल फोन में भूटान के ढेर सारे कॉन्टैक्ट्स मिले, तो और चीजें जांच के बाद परत दर परत खुलती चली गई और हमें स्पष्ट हो पाया कि नहीं, इसके तार जुड़े हुए हैं। मोबाइल में बेसिकली इनके रिकॉर्डेड ऑडियो वॉइस हमें मिले, जिसमें इनके बैकवर्ड लिंक और फॉरवर्ड लिंक हमें पता चला कि इन्हें बलिया से इनके द्वारा ले आया जा रहा है खोपड़ियों को और फिर इन्हें भूटान तक ले जाया।
बीते 19 अक्टूबर को बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर भी भारी संख्या में नरकंकाल मिले थे। पुलिस के मुताबिक संजय कुमार ने पूछताछ में उस मामले में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। पुलिस का ये भी कहना है कि इन लोगों ने अब तक हजारों कंकाल बेच दिए होंगे, क्योंकि काफी लंबे समय से ये काम करते आ रहे हैं। पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण संजय के मोबाइल के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स हैं, जिसके आधार पर पुलिस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। CDR में रेल पुलिस को नेपाल और भूटान के कई ऐसे कनेक्शन भी मिल चुके हैं, जिससे ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि संजय जिन लोगों को नरकंकाल की सप्लाई करता था वो कौन लोग हैं और इनका इस्तेमाल क्या है। नीरज प्रियदर्शी, BBC, छपरा।
और अब नजर डाल लेते हैं आज दिल्ली से छपने वाले अखबारों पर। अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरप्रीत सैनी। जी गुरप्रीत, बताएं।
जी, हाथों में लाल झंडे और बैनर थामे आगे बढ़ते किसान, और एक दूसरी तस्वीर में कुछ महिलाएं जो अपने खुदकुशी कर चुके पतियों और बेटों की तस्वीरें हाथ में लेकर खड़ी हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें आज के अखबारों में देखने को मिल रही हैं। दरअसल कर्ज माफी और फसलों के उचित दाम समेत कई मांगों को लेकर देश भर के हजारों किसान गुरुवार को दिल्ली पहुंचे थे, और आज वो सभी किसान संसद तक मार्च करने वाले हैं।
जी,
इसके अलावा एक बड़ी खबर दिख रही है सभी अखबारों में कि पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत को तैयार, ये कहा है इमरान खान ने। इस्लामाबाद में भारतीय पत्रकारों से बातचीत के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत को तैयार हैं।
लेकिन भारत सरकार लगातार कहती रही है कि जब तक पाकिस्तान अपने यहाँ से आतंकवाद पे लगाम नहीं लगाता है तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। सुषमा स्वराज भी कह चुकी हैं, अभी परसों ही कहा था उन्होंने।
जी बिल्कुल, यही कहा है भारतीय विदेश मंत्रालय ने। इसके अलावा नोटबंदी बड़ा क्रूर और मौद्रिक झटका, इसे टाला जा सकता था, ये कहा है।
किसने कहा है गुरप्रीत?
ये कहा है नोटबंदी के वक्त देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रमण्यम। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से पहले 6 तिमाही में औसत वृद्धि दर 8.1 थी, इसके बाद गिरकर 6.8 पर पहुंच गई।
जी, जिसका मोदी सरकार बहुत कहती रही है कि नोटबंदी बहुत अच्छी चीज साबित रही है देश के लिए। जी, और बताएं आगे।
इसके अलावा भीड़ की हिंसा का मुआवजा देगी सरकार, ये एक हेडलाइन दिख रही है जनसत्ता अखबार में। महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई हाईकोर्ट को गुरुवार को बताया कि भीड़ हिंसा में मारे गए एक युवक के पिता को वो 10 लाख रुपए मुआवजा देगी।
यानी कि महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि वो दे।
जी, इस युवक को 2 जून 2014 को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था, और उनके पिता ने ये मांग की थी कि सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को जो मुआवजा दिया जाता है उसी के तहत इन्हें भी मुआवजा दिया जाए।
जी, एक हिंदुस्तान में मैं खबर देख रहा हूँ गुरप्रीत, इसमें लिखा हुआ है कि 2020 से BS6 वाहन ही बिकेंगे। देश भर में BS4 वाहनों के पंजीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा, लेकिन ये अभी नहीं पता कि कब तक लगेगा। BS6 जो वाहन मानक जो होते हैं वो पेट्रोल की क्वालिटी के होते हैं, कि अभी तक BS6 आने शुरू होंगे, ये तक कब तक आएंगे तो इस पर डिपेंड करता है। अखबारों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत सैनी, और अब वक्त है खेल समाचारों का।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। लगातार तीसरा खिताब जीतने के इरादे से डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया FIH हॉकी वर्ल्ड कप पूल बी के पहले मुकाबले में आज आयरलैंड के खिलाफ उतरेगी। आयरलैंड विश्व रैंकिंग में 10वें नंबर की टीम है, ऐसे में चैंपियन टीम के सामने उसका पलड़ा कमजोर नजर आता है। ऑस्ट्रेलिया 1986, 2010 और 2014 में खिताब जीत चुकी है। इस मुकाबले के बाद होने वाले पूल बी के दूसरे मैच में इंग्लैंड का सामना चीन से होगा। वहीं मेजबान भारत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत से टूर्नामेंट का आगाज कर चुका है। पूल सी में उसका दूसरा मुकाबला बेल्जियम से 2 दिसंबर को होना है। अपने पूल में मेजबान टीम को किस टीम से सतर्क रहने की जरूरत होगी, बता रहे हैं पूर्व ओलंपियन और कप्तान अशोक ध्यानचंद।
कोई टीम नहीं है, कनाडा को हमको निकलना ही निकलना चाहिए। जैसा मैं कह रहा हूँ, जो हमारी कोशिश है, हमारी हमारी ट्रेनिंग है, हमारी सहूलियत है, हमारा एटमोसफियर, क्राउड, होम क्राउड, मौसम वगैरह वगैरह सब फेवर में है। अब फेवर में टीम को खेलना है, उसी लिहाज से खेलना है, तो कनाडा इतना मुश्किल टीम नहीं होगी हमारे सामने।
T20 विश्व कप में बल्लेबाजी क्रम को लेकर संन्यास की धमकियों और टीम में अव्यवस्था फैलाने के कोच रोमेश पोवार के आरोपों पर सीनियर क्रिकेटर मिताली राज ने सोशल मीडिया पर जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि ये उनके जीवन का काला दिन है और वो इन आरोपों से बेहद दुखी और आहत हैं। खेल के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और देश के लिए 20 साल खेलने के दौरान उनकी मेहनत और पसीना जाया गया। मिताली ने पहले पोवार पर आरोप लगाया था कि वो उन्हें बर्बाद करना चाहते थे, जबकि कोच ने T20 विश्व कप पर अपनी रिपोर्ट में टूर्नामेंट के दौरान उनके रवैये पर सवाल उठाए। भारत को सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हार झेलनी पड़ी और उसी मैच में मिताली को बाहर किए जाने पर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
वक्त हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति का, लेकिन उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर गुरप्रीत सैनी से।
BBC समाचार। यूक्रेन और रूस के बीच हुए विवाद के बाद अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रस्तावित बैठक को रद्द कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व वकील माइकल कोहेन को एक संसदीय समिति को गुमराह करने का दोषी पाया गया है। ये समिति 2016 में हुए अमरीकी चुनावों में रूसी हस्तक्षेप की जांच कर रही थी। खबर है कि इसराइल के लड़ाकू विमानों ने सीरिया में कई जगह बम बरसाए हैं। जिम्बाब्वे में गहराते आर्थिक संकट के विरोध में विपक्ष के हजारों समर्थकों ने राजधानी हरारे में मार्च किया। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रही जर्मन चांसलर एंगेला मर्कल के विमान की आपात लैंडिंग करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि विमान में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी। BBC समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक ताज़ा खबरों के लिए आए हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com पर। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दे अनुमति। नमस्कार।